Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Ambrish Saxena.
Namaskar. Aarte khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी।
इंडियन बेंचमार्क इंडिसीज एंड फ्लैट, सेंसेक्स गेन्स 0.04%, निफ्टी क्लोजेस एट 24,823। यूएस स्टॉक्स स्टंबल डाउन, नैसडैक फॉल्स बाय 1.6%, एसएनपी 500 स्लिप्स 0.8% एंड डाउ जोन्स डिक्लाइंस 0.4%। And crude oil prices are firm today. Brent crude is trading up at $78.57 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार आज स्थिर रहे। सेंसेक्स में 0.04% की बढ़त दिखाई दी, जबकि निफ्टी 24,823 अंकों पर बंद हुआ। अमरीकी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक 1.6%, एसएनपी 500 0.8% और डाउ जोन्स 0.4% लुढ़का। और कच्चे तेल के मूल्यों में मजबूती दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड $78.57 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। और आज की पहली खबर, उथल पुथल भरे कारोबार में देश के शेयर बाजारों में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 33 अंक यानी 0.04% बढ़कर 81,086 अंकों पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक यानी 0.05% की बढ़त के साथ 24,823 अंकों पर जा पहुंचा। बम्बई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक 0.6% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक स्थिर रहा। सेंसेक्स सूचकांक की 30 में से 16 कंपनियों में बढ़त दर्ज की गई।
Indian benchmark indices ended flat in volatile trade today. At closing bell, BSE Sensex closed at 33 points, 0.04% higher at 81,086. NSE Nifty was up by 11 points or 0.05% to close at 24,823. The BSE mid-cap index was down by 0.6%, while small-cap index ended flat. In the Sensex pack, 16 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Tata Motors, which was up by 1.5%, Sun Pharma was up by 1.4%, and Bharti Airtel was up by 1.3%. Conversely, the major laggards were Tech Mahindra, which was down by 1.4%, HCL Tech down by 0.9%, Asian Paints and Titan were down by 0.8% each. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 9 out of 20 sectors logged gains. The top gainers today were services, which was up by 1.07%, auto up by 0.9%, and industrials was up by 0.2%. The top laggards were realty, which was down by 2.4%, IT was down by 0.79%, and oil and gas was down by 0.76%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,048 companies, shares of 2,064 companies advanced, 1,877 companies declined, and 107 companies remained unchanged.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की कीमत 83.89 रूपये दर्ज की गई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.42 पर चल रहा था। भट्टाचार्य जी, शेयर बाजार का हाल हमने देखा, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जितनी बढ़त पिछले कई दिनों में हमने दर्ज की उसके बाद अब आगे कोई गुंजाइश फिलहाल बाजार में नहीं दिखाई थी, या कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं था जो बाजार को ऊपर की तरफ ले जाता?
देखिए, वोलेटाइल रहा है मार्केट, खास आज की जो ट्रेडिंग हुई है, और वोलेटाइल होने का ये भी कारण है कि जो मार्केट अमेरिकन मार्केट से कुछ संदेश या इंडिकेशन देख रहा है। जेरेमी पॉवेल साहब, एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्पीच जैक्सन होल में जो हो रहा है, सेंट्रल बैंकर का कॉन्फ्रेंस, तो उसके भी एक्सपेक्टेशन से भी काफी मार्केट में जरा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। भारत में जो डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं, अगर आप देखें जो आज की मार्केट जो है वो ये दर्शाती है कि वो सेक्टर्स की जो स्ट्रेस पॉइंट जो है उसको दिखाती है। अगर आप देखें ऑटो सेक्टर में अच्छी काम हुई, अच्छी मार्केट में भी अच्छा किया, पर अगर आप आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में जो है उसमें थोड़ी बहुत नरमी गिरावट भी आई है। उसका कारण है कि आईटी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, टेक्नोलॉजी एक तरफ है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जो पोस्ट कोविड जो एक एक्सेस हुई थी हायरिंग में, वो हायरिंग से एडजस्टमेंट हो रहा है। तो मार्केट जो है आज की तारीख में वही दर्शा रहा है जो अर्थनीति की हालत है, और मैं ये समझता हूं कि अगले आने वाले कल में समय में मार्केट एक नई ट्रिगर की अपेक्षा में है, और वो ट्रिगर क्या अक्टूबर का मौद्रिक नीति जो है उसकी जो समीक्षा जो होगी उसके ऊपर निर्भर करता है, या अमेरिकन फेड की जो एक निर्णय जो होगा, और आज की तारीख की जैसे मैंने कहा अभी जैक्सन होल में उनका क्या इंडिकेशन संदेश होगा उसके ऊपर भी काफी निर्भर करता है।
एकेबी, टुडे वी सॉ दैट PSU Bank was down by 0.6%. Metals was down by 0.4%. What were the reasons behind this? Even though in the equity markets today, FIIs and DIIs were net buyers. FIIs, in fact, were net buyers to the tune of almost 3,000 crore rupees, 2,896 crore rupees. DIIs, 1,944 crore rupees. Despite the buying interest in the market, the Sensex was up by only 33 points. We're talking about two straight weeks of gains here, but the marginal increase in the Sensex does not reflect the buying of FIIs and DIIs.
Well, the FIIs and FIIs are coming in and resuming their buying right now. Probably they are making good the opportunity that they lost in the last when the markets recovered. So that could be one reason. But coming back to your specific important question on the PSU banks, why they did not do well is also reflective of the kind of pressure, the margin pressure the PSU banks themselves are facing. Right now, the credit deposit ratios have become very, very adverse. The banking sector is under huge pressure in maintaining their margin, net interest margin. They are borrowing at a certain rate, and when after taking into account the CRR and the SLR and other allocations, and on CRR they don't get any interest earnings at all, the banks are in a bit of a trouble, and which is what the market is actually capturing. If you look at even the private sector banks, they are also not doing too well. So, and PSU banks, this is happening, remember, in spite of the fact that there are announcements to the effect that the government will recapitalize these banks. So, I think the financial sector is going to go through some nervousness because of this credit deposit issue, where the economy is moving more towards investors and less towards savers. So there is a transition that is happening from savers to investors. Look at the large number of people who are increasingly participating in the stock market through mutual funds and etc. The number of folios are increasing, trebling almost. Now, in this situation, bank deposits are not something that most Indians are going in for. They have become investors. So they were, till about a few years ago, they were all savers. So this transition is going to impact one sector, which is the financial sector and the banking sector. And what you raise right now, that why the PSU banks have done not done well, is actually indicative of that stress in the system.
So what would be the RBI's response to it? Usually when there is a shift in emphasis from saving to investment, right now it's 5% of GDP, which is at an all-time low, then the reserves are increased, the cash reserve ratios, the statutory liquidity ratios where banks are obligated to buy into RBI bonds. Will the RBI take that step?
Very important point you have raised. Even though the requirement of banks under SLR is around 18 or 18.5%, but many banks are above that. So many banks feel that it is safer to park your money in these bonds and get an assured return of 7-7.5% return. Now the critical question on the financial sector is that whether the RBI, and in this case the government will have to play a role, whether the CRR instrument, where the banks are supposed to park their money in CRR, that can be interest earning instruments. In a sense, right now banks park their money in CRR without earning any interest. Now nowhere in the world does CRR, a cash reserve ratio, does not yield any interest to banks. Now in India, the banks completely lose their money, their interest earnings from CRR. So, and that is a good part of what constitutes RBI's profit.
Well, I would like AKB, my counter would be that how can there be a demand for reducing the repo rate from 6.5% to a rate which is much lower, if the demand for funds is so high on the part of the banks? You're saying that they would be anti-regulation. Typically, they don't want to tie up the funds into the CRR or the SLR, but they are offering a higher rate of interest of funds to be parked in the bank. Now, for that, you need a high interest rate on deposits. So,
no.
How can the RBI reduce the repo
rate? No, the question is not the repo rate. It's the CRR rate, I'm saying. I'm talking about the cash reserve ratio rate. Now, the cash reserve ratio is around 4.5% of the total bank's deposits have to be parked with RBI with no interest earnings. So, that is a net loss for the banks. So, the question of repo rate is completely different. The repo rate is the rate at which the banks can park their instruments and get their interest rate, which is 6.5% right now. Now, if that comes down, then naturally the banks will be encouraged to bring that money out from RBI and deploy it in credit allocations and build their assets. Now, that is something completely different. What I am saying is this, that right now the net interest margin is under pressure, and this net interest margin can be relieved, that pressure can be relieved somewhat if you see the CRR interests are introduced.
So now we are sounding like the MPC committee right now. Would you like to add something, Ambrish?
मैं भट्टाचार्य जी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर डिफरेंट सेक्टर्स की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने इतने उथल पुथल के बीच में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है?
ऑटो सेक्टर में जो हो रहा है वो इस वक्त एक तरफ तो जो एक क्लैरिटी की जरूरत थी वो पॉलिसी पर्सपेक्टिव से वो आ गई है. वो ये है कि आप किस तरह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस तरह से आप बढ़ावा देंगे, उसमें एक पॉलिसी क्लैरिटी आ गई है कि अपार्ट फ्रॉम जो इंसेंटिव ऑलरेडी दिया गया है उसके ऊपर और कोई इंसेंटिव नहीं आएगा. सो उससे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है, और ऑटो सेक्टर की अगर आप सेल्स की अगर देखेंगे तो जो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री को कम करने के लिए ऑटो सेक्टर ने काफी वही कंपनियां ने काफी स्टेप्स लिए हैं, उससे उनकी इन्वेंट्री लेवल में कम हुई है और सेल्स का जो स्कोप जो है कमिंग फॉरवर्ड वो बढ़ गया है. तो मैं ये समझता हूं कि ऑटो सेक्टर की जो अर्निंग्स जो आउटलुक जो है वो इम्प्रूव हुई है और उसी लिए मार्केट में आज ऑटो सेक्टर में, ये आज की बात नहीं है, कई दिनों से ये ऑटो सेक्टर काफी अच्छा काम दिखा रही है।
बट देयर इज एन इन्वेंट्री बिल्ड अप ऑल्सो इन द ऑटो सेक्टर, इजंट
दे हैव फाउंड आउट अ सॉल्यूशन हाउ टू reduce that inventory, and that is why there is a hope that it will get clear up, and therefore the actual it will have an impetus for sales.
So aage aane wale hafte mein aapko kya lagta hai, ye jo uthal puthal hai jari rahegi ya kuch positive indicator aane pe aapko bazaar badhta hua dikh raha hai?
Uthal puthal tab tak chalta rahega jab tak na interest rate kaisa hoga uske upar clarity aaye. ये मैं क्लैरिटी जैसे कि यूएस फेड की एक इंडिकेशन आएगी और दूसरी क्लैरिटी आएगी आपकी अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उससे पहले भी हमें नजर आएगा कि किस एमपीसी की जो मेंबर्स जो हैं वो कैसे हैं।
जी,
इस वक्त का जो मेंबर्स जो हैं वो काफी वो जरा कंजर्वेटिव है, वो इंटरेस्ट रेट को घटाना नहीं चाहते हैं, तो अगर वो ऐसे एमपीसी की कॉम्पोजिशन हो जो कि इंटरेस्ट को घटाने में जरा ज्यादा तेजी दिखाए तो मैं ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट वो रिस्पॉन्ड करेगा उसी तरह से।
और अगर हम रुपए की कीमत की बात देखें, आज 4 पैसे मजबूत हुआ रुपया, तो इसके किस संदर्भ में आप देखते हैं भारत की
जो रुपए की जो मजबूती है वो मैं देखता हूं कि जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में है, एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं बढ़ रहा है पर कुछ तेजी कुछ तो है। फर्स्ट क्वार्टर में 5% ग्रोथ हुई थी, वो पहले पिछले क्वार्टर से ज्यादा था, तो जो ट्रेड डेफिसिट के कारण जो डॉलर की शॉर्टेज जो होती है वो जरा शॉर्टेज कम है। और उस तरफ जो दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार की जो फॉरेक्स रिजर्व्स की सिचुएशन है वो अच्छी स्ट्रांग है। हालांकि रुपए को स्ट्रांग होना एक्सपोर्ट्स के लिए ठीक नहीं है
जी,
पर इम्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इम्पोर्ट की कॉस्ट घट जाती है।
देखिए भी, दी डॉलर इंडेक्स इज बीन स्लाइडिंग, इट्स 101.42, सो क्लियरली द रुपी एंड अदर करेंसी शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट डिवैल्यूएशन। डू यू सी द डॉलर कमिंग डाउन फर्दर और गोइंग अप?
आई थिंक द इंडेक्स विल कम डाउन, एंड इफ द इंडेक्स कम्स डाउन द रूपी गेट स्ट्रांगर। So when rupee gets stronger, you might get the sense that rupee is doing well. But if it does well, but if your exports don't benefit as a result, and productivity gains are not realized, then the overall economy will not be able to get the full benefit from this rupee strengthening.
In more news, India's engineering goods exports went up by 3.66% in July, as shipments to countries such as the US, UAE, Saudi Arabia and Singapore recorded positive growth. The Engineering Export Promotion Council of India data showed on Friday. The total value of engineering goods exports in July stood at $9.04 billion as against $8.72 billion in the same month last year. The uptick was attributed to a recent rise in shipments of electrical machinery, automobile and auto components, and construction machinery, including cranes, lifts and winches, among others. Cumulative engineering exports during the April to July period were recorded at $36.97 billion as against $35.49 billion during the same period of the last fiscal, registering an increase of 4.18% according to the EEPC. India, just a brief question. Usually, a developing economy, one of the metrics is whether they are producing consumer goods or producer goods. So if you're producing engineering goods, which are producer goods, it's a good indication that you are in the right direction of industrialization.
Well, absolutely, you are. But you have to see that these are all meant for exports. And you have to see the export metric, where the growth is just around 3.6% in July. And if you take the April-July period, it's around 4.18%. Now, clearly we need to promote our exports and engineering exports, and particularly at a higher pace, also because it creates jobs and quality jobs, because it is in the high-end manufacturing sector that these items are produced, whether it is electrical machinery or automobile and auto components. So therefore, this is a sector which needs greater focus so that we can produce more and export more and create more jobs and have more value-added products.
और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के पांच में से तीन बाजारों में आज तेजी का रुख रहा। जापान का निकेई सूचकांक 0.40% बढ़ा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.43% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.20% की तेजी दिखाई दी। दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई बाजार के कोस्पी में 0.22% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.16% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय बाजारों में भी आज तेजी रही। जर्मनी का डैक्स 0.69% बढ़ा, फ्रांस के कैक में 0.62% और लंदन के फुटसी में 0.34% की तेजी दिखाई दी। भट्टाचार्य जी, एशिया के बाजारों में तो हालांकि मिलाजुला रुख रहा, लेकिन यूरोप के सारे ही बाजार आज बढ़त की तरफ थे। कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने यूरोप के बाजारों को ये बढ़त दी?
एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रहे हैं यूएस फेड क्या करेगा, और जैसे मैंने पहले कहा कि जो जैक्सन होल में जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग थर्सडे को शुरू हुई थी और आज कुछ देर बाद जेरेमी पावेल साहब अपना बयान रखेंगे, और उस बयान में भी साफ मालूम होगा कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक किस तरफ किस दिशा में जा रहा है, इन्फ्लेशन को पूरी तरह से रोक रखा है या इंटरेस्ट रेट को घटाने की ओर जा रहे हैं। तो इसी एक्सपेक्टेशन से मैं समझता हूं कि यूरोपियन मार्केट थोड़ा में तेजी आ रही है, और बाकी जो रीजन है थोड़ा बहुत जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर के इनिशियल इम्पैक्ट के बाद थोड़ा बहुत अब स्टेबिलाइज कर रहा है। जो ओवरऑल क्रूड ऑयल की दामें जो हैं ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, स्टेबिलाइज कर रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपको हमें स्टॉक मार्केट में यूरोपियन मार्केट में दिख रहा है।
व्हाट अबाउट द जापानीज येन? वी हैव द निकेई व्हिच वेंट अप बाय 0.4%। इट्स सीन कैरी ट्रेड, आल्सो विटनेस ब्लैक फ्राइडे वेयर निकेई फेल बाय ऑलमोस्ट 12.5% ऑन वन डे इटसेल्फ। यू सी द येन स्टिल एज द इंटरनेशनल प्रेफर्ड करेंसी फॉर बोरोइंग?
वेल, आई डोंट थिंक इट्स इज एनी मोर द प्रेफर्ड बोरोइंग आफ्टर what the how the situation has developed in the Japanese market today. As a matter of fact, there is a tricky situation for those who had used the carry trade instruments and using yen, because they now have to pay a slightly higher price for settling their trades. So that has actually caused a bit of a stumble, I would say, in the overall markets.
Let's have a look at the U.S. market now. U.S. stocks stumbled down yesterday as traders digested fresh economic data and awaited confirmation from the U.S. Fed Reserve that it will soon start to cut interest rates. Major U.S. markets are trading in negative territory. The Nasdaq composite fell by 1.6%, S&P 500 slipped 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average lost 0.4%. The market is linking its sentiment to what's happening with the Fed Reserve's announcement on the discount rate. Would you expect a calibrated decrease in the discount rate from 5.25% to 5.5%, or will there be a sharp fall in discount rate?
I think there would be a calibrated fall. It will not be a sharp adjustment. Because remember that the U.S. economy, the production is not, there are clear signs of early signs of some sort of, recession, early signs of recession. Unemployment is going up. So therefore, Fed is probably will have to revisit its timeline. Or the timetable for reducing the interest rates. So therefore, I would say that it will do it in a very calibrated, gradual fashion. The inflation rate is more or less coming where it wanted it to come. So I would say that the short answer to your question is yes, it will be a calibrated declined.
Inflation Reduction Act by President Biden, what's the impact of that briefly, and will that continue under the next presidency?
Well, the Inflation Reduction Act actually helps the domestic industry very much, in the sense that they, instead of pushing their investments outside the country, they are encouraged to bring it back into the country, and they get some incentives for doing it. That is another form of the return of the industrial policy. And my sense is that these so-called directional change in the globalization has happened and grown roots, and this will continue to be preferred policies, whatever may be the outcome in the U.S. elections in November.
Moving on to the crude oil market, oil prices firmed on Friday but were on track to end the week lower as weaker U.S. employment data raised concerns over the health of the world's largest oil consumer, and renewed ceasefire talks in Gaza eased worries about supply. The global oil benchmark Brent crude is trading at 1.75% up to $78.57 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate, WTI, is also trading up 1.94% to $74.43 per barrel. When reports last came in, it appears that the rise in oil prices linked to West Asia, that there's a possible ceasefire between Hamas and Israel. Do you see that viable, A, and B, is there a increase in demand for oil globally right now?
Well, if the prices are softening, it is not just because they are hopeful of resolution of the West Asian crisis, but more important is a factor of the global market. The trade, the outlook is not good. The output, the global growth output outlook is not very good. So there is no way that the oil producers see that their oil demand will go up, and therefore there is some sort of a supply demand mismatch, and as a result of which you are seeing that prices are actually softening and reaching this kind of a level.
जी लेकिन भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि जो अभी जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम हैं उससे भारत को सीधा सीधा उसका बेनिफिट पहुंच रहा है, जो हमारे रिटेल जो खरीदार हैं उनको भी उसका लाभ मिल रहा है?
एकदम सही कहा आपने, रिटेल खरीदार को अच्छा, उनको उनका इम्पैक्ट हो रहा है, और उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है देश की एक्सटर्नल इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें कि जो हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो होती थी वो अब इस वक्त जो ऑलमोस्ट 1% से नीचे आ गई है, वो भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, और उसका कारण सिर्फ वेस्ट एशिया और ब्रेंट क्रूड के नाम से नहीं है, उसका कारण ये भी है जिस समझदारी से हमने रशियन क्रूड ऑयल जो यूराल को हमने इस्तेमाल किया है, जिससे कि आज की तारीख में रशियन क्रूड ऑयल 40% हमारी जो जो जो, 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 जो आयात की जो वृद्धि दर है उसमें करती है।
जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.49% बढ़कर 71,700 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। अंतिम समाचार मिलने तक चांदी 1.02% बढ़कर 84,890 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। भट्टाचार्य जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Indian benchmark indices end flat. Sensex gains by 0.04%. Nifty closes at 24,823. US stocks stumble down. Nasdaq falls by 1.6%. S&P 500 slips 0.8%. And Dow Jones declines by 0.4%. And crude oil prices are firm today. Brent crude is trading up at $78.57 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.